الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سب سے پہلے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میں پورے دل سے بہت بہت مبارکبادی دینا چاہتا ہوں سردار پریوار کے بھائیوں کو اور مجھے ان کی کاریہ شیلی میں شردا ہے اس بات کی کہ اگر اسی طریقے سے کام ہوتا رہا تو ہندوستان دنیا کی مہا ستا بن کر کے رہے گا واقعی ہمارے گوتم بھائی جن کے اندر میں گوتم بدھ کی خوبیاں دیکھ رہا ہوں اور جناب وینی لال جی کے اندر میں پھولوں کی وینی کی جیسی خوشبوئیں دیکھ رہا ہوں جب رات کو میں ایک جگہ سے لوٹ رہا تھا یہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے آئے میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے سے ایک بھارتیہ ہونے کے ناطے سے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آج کے اس پروگرام کے اندر حاضر ہو جاؤں بہت شردا کے ساتھ میری اس بات کو آپ سنیے دل کی دنیا پر لکھ لیجئے ہمارے دیش کی زمین بھارت کی زمین مالک کا میرے اوپر احسان ہے آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک دنیا کے پانچوں کھنڈ کے اندر میں نے سفر کیا ہے لیکن میں پوری شردا کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو محبت جو سدبھاونا اللہ نے پرمیشور نے ہندوستان کی سرزمین میں رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دھرتی میں نہیں ہے آپ کو معلوم نہ ہو تو میں ایک بات بتلا دوں کہ سب سے پہلے انسان جن کو ہم قرآن کی بھاشا میں آدم کہتے ہیں جن کو وید کی بھاشا میں منو کہا گیا ہے پرمیشور نے اللہ نے اس پہلے انسان کو دھرتی پر اتارنے کے لیے پوری دھرتی کے اوپر اگر کوئی حصہ پسند کیا تو وہ ہندوستان کو پسند کیا یہ ایک پیغام تھا مانوتا کے واسطے میں بہت پیار اور محبت سے سوامی جی کی اس سوچ کو چوم لیتا ہوں ہماری اس وڑیل کی سوچ کو چوم لیتا ہوں آکاش ایک ہے دھرتی ایک ہے تو پھر ہم سب انسان بھی ایک ہیں آپ نے اسلام اسلام تو بہت سنا ہے نا لیکن کبھی اسلام کے میننگ کے اوپر آپ نے تھنک کیا کبھی سوچا آپ نے اسلام کس کو کہتے ہیں اسلام کا میننگ ہوتا ہے شانتی اور امن مسلمان کس کو کہتے ہیں ایک دھرم گرو ہونے کے ناطے سے ایک مفتی ہونے کے ناطے سے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو جواب داری یاد دلانے کے لیے اور آپ کو ایک صحیح میسج دینے کے لیے بتلا دوں کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں कि जो शांति को चाहने वाला हो, शांति को फैलाने वाला हो और धरती के ऊपर शांति को कायम करने वाला हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानियत के लिए, समग्र मानव जात के लिए आखिरी पैगंबर बनकर के आए, जिस धरती पर पैदा हुए वो मक्का की धरती, 53 बरस अपनी लाइफ के जिस मक्का की धरती के ऊपर पैगंबर साहब ने गुजार दिए, उस मक्का वालों ने पैगंबर साहब पर कितने अत्याचार किए, कितने जुल्म किए। पैगंबर साहब रास्ते पर आते थे, कांटे बिछाते थे। पैगंबर साहब घर से निकलते थे तो घर में से कचरा पैगंबर साहब के ऊपर डाल देते थे। एक वक्त वो आया कि मक्का के लोगों ने पैगंबर साहब का हर तरह बायकॉट किया। पैगंबर साहब को धरती से मिटाने के लिए प्लानिंग की। परमेश्वर ने, अल्लाह ने उनसे कहा, आप मक्का से मदीना चले जाइए। आप मदीना चले गए, मदीना में 8 साल रहे और फिर 9वें साल जब मक्का आते हैं, इसलिए आए थे कि मक्का को हमेशा के लिए अमन और शांति का इंटरनेशनल सेंटर बनाना है। जिस दिन पैगंबर साहब मक्का पहुंचे हैं उस दिन की बात थी, 14,000 अनुयायी साथ में थे। पैगंबर साहब चाहते तो पूरे मक्का के अंदर कत्ले आम होता। मक्का के उन जालिमों को पैगंबर साहब अपनी तलवार से खत्म कर सकते थे, लेकिन पैगंबर साहब ने मक्का पहुंच करके पूरे मक्का वालों को अमन का, शांति का और माफी का पैगाम दिया और यूं कहा, ए मक्का के जालिमों, तुम्हारे कांटे मुझे याद हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर के आया हूं। ए मक्का वालों, तुमने मुझे मजबूर किया था मक्का से निकलने के ऊपर, लेकिन मैं तुम्हारे लिए माफी का, शांति का संदेश लेकर के आया हूं। इस मक्का को कयामत तक के लिए अमन और शांति का इंटरनेशनल सेंटर बनाना है। उस मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने मक्का के जालिमों को माफ कर दिया था, तो उस पैगंबर साहब की तालीम कैसे दूसरों के ऊपर जुल्म करने की इजाजत दे सकती है। वो तो यूं फरमाते हैं, ए लोगों, तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह परमेश्वर तुमको यूं कहता है कि तुम जमीन पर रहने वाले समग्र मानव जात के ऊपर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आप अगर कुरान न पढ़ा हो तो जरूर उठा के उसको पढ़िए। हम कुरान को बंद करके नहीं रखते। किसी भी स्टोर के ऊपर आप जाइए, जहां इस्लामिक लाइब्रेरी हो, आप बुक स्टॉल हो, आपको कुरान मिलेगा। गुजराती में ट्रांसलेशन भी मिलेगा, दुनिया की तकरीबन हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन मिलेगा। कुरान की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, उसमें पहला सेंटेंस ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उस कुरान को शुरू करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ उस अल्लाह, उस परमेश्वर के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला मेहरबान खुदा है। जिस कुरान का पहला सेंटेंस, पहला वाक्य ये हो कि वो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, याद रख लो, उस अल्लाह को मानने वाले कभी किसी के ऊपर अत्याचार, आतंकवाद नहीं कर सकते। हम तो सबको अमन और शांति का पैगाम दुनिया के अंदर देना चाहते। मेरे वडिलो, मैं आपको जरा इतिहास पर ले जाऊं। आप याद करो उस वक्त को। स्वामी जी ने आज एक बहुत ऊंची बात बतलाई है। काश, मेरी तमन्ना, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक स्वामी जी की इस बात को अगर समझ ले तो आज जात नात के कौमवाद के तमाम भेदभाव मुझे श्रद्धा है कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आपने स्वामी जी की एक बात के ऊपर ध्यान न दिया हो तो मैं आपको दिलवा दूं, स्वामी जी अपनी बात में ये कह गए कि जिस कौम ने जिस गवर्नमेंट ने 150 बरस इस मुल्क को गुलाम बनाया वो लोग आज इस मुल्क के अंदर कौमवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस धरती के अंदर प्यार और मोहब्बत है, यहां कोई आपस में भेदभाव है नहीं, ये बाहर से लाई हुई चीज है। मैं आपको आजादी के दिनों की तरफ ले जाऊं, जब हम जेलों में जाते थे, जब हम फांसी के माचड़ों को चूमते थे, उस वक्त के ऊपर हम ये कहते थे कि हम इस्लाम के लिए नहीं, हिंदू भाई ये नहीं कहते थे कि हिंदुत्व के लिए नहीं, हर एक ये कहकर के फांसी का माचड़ा चूमता था, हम देश के लिए फांसी को चूम रहे हैं। उस वतन प्रेम को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक घटना मैं आपको याद दिला दूं कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जमीयत उलमाए हिंद के साथ मिलकर मुकम्मल ठहराव पास किया कि अंग्रेजों को कहना है कि हिंदुस्तान छोड़ो, क्वाइट इंडिया की जब चरवड़ चलाई गई और मुकम्मल पूरी आजादी का ठहराव पास किया तो दिल्ली का चांदनी चौक आज भी हमारे लिए साक्षी बनकर के मौजूद है। उसको जाकर के पूछ लो, नेहरू जी, सरदार पटेल और सब नेता, महात्मा जी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हिफ्जुर रहमान सहारवी, सब लोग मौजूद थे और उस ठहराव को 6 लाख मानव के समुद्र के सामने अंग्रेजों को पढ़ करके सुनाना था। सामने लाल किले के ऊपर अंग्रेजों का यूनियन जैक लहरा रहा था, यहाँ स्टेज था, सामने 6 लाख मानव का एक समुद्र था। नेहरू जी ने और गांधी जी ने मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट की, मौलाना हम आपसे ये कहते हैं कि मुकम्मल आजादी का ठहराव स्टेज पर आकर के आपको पढ़ करके सुनाना है। और उस वक्त का सीन ये था कि अंग्रेज मिलिट्री हाथ में मशीन गन लेकर के वो खड़े थे कि जो भी इस स्टेज पर आएगा हमारी मशीन गन उसकी छाती को गोलियों से छलनी बना देगी। मौलाना हिफ्जुर रहमान ने स्टेज के बाजू में खड़े होकर के अपने अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ की और अल्लाह से ये कहा, ए अल्लाह आज अपने वतन की आजादी का ठहराव पढ़ने के लिए स्टेज के ऊपर जा रहा हूं, अगर अंग्रेज की गोली चले और मेरे सामने गोली आए तुझसे दुआ करता हूं कि ये गोली मेरे सीने के ऊपर, मेरी छाती के ऊपर लग जाए, मेरी पीठ के ऊपर न लगे, इसलिए कि अगर मेरी पीठ पे गोली लगी तो अंग्रेज इतिहासकार ये लिखेंगे कि भारतीय लोग बुजदिल हुआ करते हैं। मैं अपने हिंदुस्तानियों का बहादुरपन बतलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों की गोलियां चले हमारे सीनों के ऊपर लगे, उसी कौमी एकता के साथ आकर के उन्होंने ठहराव को पढ़ करके सुनाया। क्या सिंह गर्जना थी कि उन सिपाहियों की, मिलिट्री मैनों की उंगली वहीं के वहीं रह गई, वो एक गोली भी चला नहीं सके। जेल में जाना हुआ तो अंग्रेजों की जेलों के अंदर जहां महात्मा जी होते थे, जहां सरदार पटेल जी होते थे, जहां नेहरू जी होते थे, वहीं मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हिफ्जुर रहमान सहारवी होते थे। सब एक हिंदुस्तानी होकर के अपने वतन के वास्ते इन्होंने जेल की कठिनाई को, सजाओं को आजादी के वास्ते बर्दाश्त किया था। काश कि आज वो एकता फिर से हमारे अंदर आ जाती। आपको मालूम होना चाहिए जब मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब का जनाजा उठा, जब उनकी मौत हुई तो हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके जनाजे के अंदर पीछे पीछे चल रहे थे और लाल किले के सामने जब उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी गई तो वो ये समझ रहे थे कि मैं एक भारतीय हूं और आजादी के एक महान सेनानी की नमाज के लिए नेहरू जी बिल्कुल पहली सफ में खड़े होकर के नमाज अदा कर रहे थे। ये क्या थी कौमी एकता? हमने याद रखिए, दुनिया की उस जमाने की महान सुपर पावर ताकत अंग्रेजों को, जिनका सूरज कभी डूबता नहीं था, इसी कौमी एकता के जरिए से हमने इनको हमारे मुल्क से निकाला है। अगर आज हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर ताकत बन जाए, तो आइए हम सबको एक होकर के आगे बढ़ना होगा। जब हमारे अंदर एकता होगी तो दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं कर सकती। कितना प्यारा फूल का दस्ता मुझे और स्वामी जी को आपने पेश किया, ये गुलदस्ता, ये फूलों का हार कब प्यारा लगता है। मैं श्रद्धा परिवार के नौजवान भाइयों से, कितना प्यारा आपने ये फूल का हार पेश किया, आज कितना प्यारा मंजर है। शहर भाजप के प्रमुख भी बैठे हैं, बाजू में शहर कांग्रेस के प्रमुख भी बैठे हैं और सब लोग इस फिक्र में हैं, इसी दर्द के अंदर हैं कि कैसे देश के अंदर कौमी एकता हो जाए और हमारा देश प्रगति के ऊपर आए। मैं तुमको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि हम देश के खातिर इसी तरह मिलजुल करके बैठेंगे। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह हमारे देश को प्रगति से नवाजेंगे। मैं कह रहा था इस फूल के हार को, तो ये फूल का हार कितना खूबसूरत लगता है। इसमें कोई गुलाब का है, कोई चमेली का, कोई मोगरे का, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफेद है, तो कोई हरे हरे पत्ते हैं। कितना खूबसूरत ये गुलदस्ता है। लेकिन इसी गुलदस्ते का कोई फूल मुरझा जाए और वो कर्मा जाए तो फिर इसी फूल दस्ते को लोग कहेंगे कि ये गले में पहनने के काबिल नहीं है, ये कचरा पेटी के काबिल है। ये गुलदस्ता, ये फूल का हार हमें मैसेज दे रहा है कि जिस दिन इस फूल के हार की तरह इस देश में बसने वाले तमाम जाति के लोग खिले हुए होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और एक दौरे में मिलजुल करके रहेंगे, तो पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का नक्शा फूल के दस्ते की तरह खूबसूरत मालूम होगा। आज ऐसी कौमी एकता की हमें तलाश है। बहुत अच्छा कदम ये हमने उठाया है। गौतम जी, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, आपको मालूम है कि महात्मा जी ने जब दांडी यात्रा की थी इसी नवसारी के अंदर, जब महात्मा जी पहुंचे थे तो उन्होंने रात के अपने प्रवचन के अंदर कहा था, नवसारी आने से पहले अगले दिन महात्मा जी दामण के अंदर थे और जब महात्मा जी दामण में ठहरे थे तो मेरा जिस यूनिवर्सिटी से संबंध है, दाभेल की यूनिवर्सिटी से, उस जमाने के जो टॉप के उच्च कोटि के जो विद्वान उलमा थे, आलिमे दीन थे, मौलवी लोग थे, उन्होंने आकर दामण में गांधी जी से मुलाकात की थी और गांधी जी को पैगंबर साहब का फरमान दिया था। तो दूसरे दिन नवसारी की इसी जाहिर सभा में गांधी जी ने कहा था कि कल दामण के अंदर हमें एक खुशी की बात मालूम हुई कि इस्लाम धर्म के अंदर भी नमक और मीठू के ऊपर टैक्स लगाना हराम है। और इसी जमीन के ऊपर गांधी जी ने ये वाक्य अपनी जबान से कहा था कि हमारी इस चरवड़ को, हमारी इस चरवड़ को इन मौलाना साहब लोगों के फतवे की वजह से एक नया जोम और नया पावर मिला हुआ है। तो जिस आजादी की हमने एक कौमी एकता के जरिए से प्राप्ति की थी, आज उसी की हमें तलाश है। मैं आपको बताऊं, मुसलमान मक्का जाता है, हज का फरीजा अदा करने जाता है। आपने अगर हज का प्रोग्राम जो लाइव कास्टिंग होता है न देखा हो तो नेक्स्ट टाइम जरूर देख लीजिए। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि मक्का की पवित्र भूमि के ऊपर जहां भारतीय हाजी लोग होते हैं वहां आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके हाथ में ये तिरंगा झंडा होता है और इसी तिरंगे झंडे को सामने रख करके मक्का की पवित्र भूमि के ऊपर ये अल्लाह की बंदगी करते हैं। तो जहां हम हज करने गए का हमारी ओर खान क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, का हमारे हाथ में तिरंगा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं और हम हिंदुस्तान का मैसेज लेकर के यहां पर आए हैं। आतंकवाद ये मानवता के लिए दुश्मन है। अब तो सुदर्शन जी ने भी, अडवाणी जी ने भी ये बात कह दी कि आतंकवाद का किसी धर्म से संबंध नहीं होता। मैं एक कदम आगे चल के कहता हूं कि आतंकवाद का मानव जात से कोई संबंध नहीं है। जो आतंकवादी है वो अपने आप को धार्मिक तो क्या, मानव कहलाने के भी लायक नहीं है। और याद रखो, शहीदों का खून कभी बेकार नहीं जाता। कुरान में है, अल्लाह फरमाते हैं कि शहीद को मौत नहीं आती, वो स्वर्ग में जन्नत के अंदर वो जिंदा है और परमेश्वर उनको वहां पर नवाज रहे हैं। शहीदों का खून कभी बेकार नहीं जाएगा और इंशाल्लाह मुझे पूरी श्रद्धा है कि ये देश प्रगति के ऊपर आएगा और अल्लाह इस देश को खूब प्रगतियों से नवाजेंगे। हमने इस देश से ऐसा रिश्ता जोड़ा है कि मरने जीने का हमने इसके साथ रिश्ता जोड़ा है। जब कभी भी देश के लिए जरूरत पड़ी है, 1857 में, 1857 में अंग्रेजों ने जिसको विप्लव कहा, प्रोफेसर मेवाराम गुप्ता लिखते हैं, मैं नहीं कहता, प्रोफेसर मेवाराम गुप्ता लिखते हैं कि 1857 के अंदर जब देश के लिए बलिदान देने की जरूरत पड़ी थी तो 45,000 मौलवियों ने देश के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था। हमने इस देश के खातिर जान की कुर्बानियां भी दी है और भविष्य में जब कभी जरूरत पड़ेगी तो इस देश का मुसलमान इंशाल्लाह कभी पीछे नहीं हटेगा। हमको तो हमारे वडिलों ने सिखाया है कि मातृभूमि वतन के साथ मोहब्बत करना हमारे मजहब का आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा है हमारे मजहब का अपने वतन के साथ मोहब्बत और प्रेम करना। इसीलिए आज के इस अवसर को मैं बहुत शुभ समझता हूँ, बहुत नेक समझता हूँ कि नवसारी के हमारे श्रद्धा परिवार के भाइयों ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। फिर से मैं इनको मुबारकबादी देता हूँ। जिस दिन ये सीन आपको देखने को मिलेंगे और जिस दिन हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर महल्ले के अंदर ये मंजर और ये जो है नक्शा आपको देखने को मिलेगा, तो फिर हिंदुस्तान को महासत्ता बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। इसी कौमी एकता के अपने मैसेज के ऊपर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ एक शेर के साथ कि सियासत की बात अहले सियासत जाने, राजकारण को उर्दू में सियासत कहते हैं, सियासत की बात अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, पूरे मुल्क के अंदर ये पहुंचता चाहे। और मैं कहूंगा हर इंसान से मोहब्बत से पेश आओ, हर इंसान से मोहब्बत से पेश आओ, अपनी जबान से, अपने किरदार से, अपनी वाणी से, अपने चारित्र्य से अमन के दुनिया में फूल बरसाओ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, सारे जहां से अच्छा कहो हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, कौमी एकता अमर रहो, कौमी एकता, शहीदों शहीदों। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सुना, मैं आप सबका दिल से आभार